नमस्कार भारत, 27 मार्च दिन मंगलवार और मैं हूं कुलदीप मिश्र। रूस के खिलाफ राजनयिक निष्कासन की झड़ी, ब्रिटेन के बाद अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने 100 से ज्यादा रूसी राजनयिकों को निकाला।
Today's actions make the United States safer by reducing Russia's ability to...
सपा बसपा गठबंधन हुआ तो 2019 में किसे हो सकता है ज्यादा फायदा?
अगर सीटों को लेके गफलत नहीं रहती है तो फायदा मायावती को जाके होगा। वजह मायावती शून्य पर है और विधानसभा में अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस में 19 पर है।
और मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी नैपकिन मिला तो लड़कियों को निर्वस्त्र कराकर की जाँच।
मेरा आपसे कहना यही है कि हम लोग के साथ इतना मिसबिहेव किया गया है छोटी सी बात को लेके कि हम आपको पूरा डीपली नहीं बता सकते।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। ब्रिटेन में हुए नर्व एजेंट हमले के बाद रूसी राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने कहा है कि वो दो राजनयिकों को निकालने का फैसला दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में रासायनिक हथियारों के पहले इस्तेमाल के जवाब में ले रहे हैं। इससे पहले अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूक्रेन और दर्जनों यूरोपीय देशों ने रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने की घोषणा की थी। ये शीत युद्ध के बाद से रूसी राजनयिकों का सबसे बड़ा निष्कासन है। ब्रिटेन का कहना है कि पूर्व रूसी डबल एजेंट सर्गेई स्क्राइपल और उनकी बेटी यूलिया पर हुए नर्व एजेंट हमले के पीछे रूस ही है। इस हमले के बाद दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं रूस ने कहा है कि वह जल्द ही जवाबी प्रतिक्रिया देगा। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि बुल्गारिया में हुई बैठक में उठाई गई कई चिंताओं पर उन्हें तुर्की की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क ने कहा है कि सीरिया में तुर्की के अभियान समेत कुछ मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि साल 2016 में हुए तख्तापलट के नाकाम प्रयास के बाद से तुर्की में कानून का शासन कम हुआ है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब अरदवान ने कहा है कि तुर्की और यूरोपीय संघ के बीच रिश्ते तब तक नहीं सुधर सकते जब तक यूरोप तुर्की की अत्यधिक आलोचना बंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि चरमपंथी समूहों के खिलाफ तुर्की की लड़ाई को सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि यूरोप को भी फायदा पहुंच रहा है। अरदवान ने कहा,
तुर्किये हालहाजिरदा बिरचोक टेरर örgütünün hedefinde yer alıyor।
आज तुर्की इस्लामिक स्टेट PKK, YPG और कई अन्य चरमपंथी समूहों के निशाने पर है। वो संगठन जिनसे तुर्की अपनी सीमाओं के भीतर और बाहर लड़ रहा है। हमने ही फरात का कवच स्थापित किया ताकि इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद से लड़ सकें। हम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अन्य अभियानों में भी लिप्त हैं और इसमें न सिर्फ तुर्की और सीरिया बल्कि यूरोप के नागरिक भी सुरक्षित होंगे। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तुर्की की आधारहीन आलोचना की वजह नहीं बननी चाहिए। तुर्की मूल मानवाधिकारों का सम्मान करता है और ये वो देश है जहां मानवाधिकारों का सम्मान होता है। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रिचेप तैयब अरदवान के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। 1982 में हुए फॉकलैंड युद्ध के दौरान मारे गए अर्जेंटीना के 90 सैनिकों के परिवारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इन सैनिकों के शवों की फोरेंसिक जांच के बाद पहचान की गई है। अर्जेंटीना और फॉकलैंड के पादरियों ने तेज हवाओं के बीच डार्विन कब्रिस्तान में प्रार्थना सभा आयोजित करवाई जिसमें 200 लोगों ने अपने परिजनों को याद किया। दक्षिणी अटलांटिक सागर के इस द्वीप पर, जिसे अर्जेंटीना में ला मालविनास कहा जाता है, में हुई ये प्रार्थना सभा बेहद नाजुक कूटनीतिक वार्ताओं के बाद आयोजित की जा सकी है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के वैज्ञानिकों ने नई DNA तकनीक के जरिए सैनिकों के शवों की पहचान की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 19वीं सदी में ब्रितानी औपनिवेशिक अधिकारियों के हाथों फांसी पर लटकाए गए 5 मूल निवासी नेताओं की मौत के लिए औपचारिक माफी मांग ली है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7300, 9510 और 11995 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत।
ब्रिटेन में एक पूर्व रूसी जासूस की एक खास तरह का जहर देकर हत्या करने की कोशिश की गई थी, जिसे लेकर ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव बना हुआ है। कल इस मामले में ब्रिटेन को कई यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया समेत अमेरिका का भी साथ मिला। इन सभी देशों ने अपने यहाँ से कई रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इनकी संख्या कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा है। शीत युद्ध के दौर के बाद से इसे रूस के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। रूस ने कहा है कि वो भी पलटवार करेगा। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
ब्रिटेन में एक पूर्व रूसी डबल एजेंट और उनकी बेटी पर नर्व एजेंट से हुए हमले के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच पैदा हुआ कूटनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन का साथ देते हुए रूसी राजनयिकों के निष्कासन की घोषणाएं की हैं। पश्चिमी देशों की इस समन्वित प्रतिक्रिया से इतिहास में रूस के राजनयिकों का सबसे बड़ी संख्या में निष्कासन हुआ है। अमेरिका ने सबसे अधिक 60 रूसी राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला लिया है। व्हाइट हाउस ने इस फैसले का बचाव किया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सचिव राज शाह ने कहा है कि ये समन्वित प्रतिक्रिया अमेरिका को और सुरक्षित बनाएगी। उन्होंने कहा,
Today's actions make the United States safer by reducing Russia's ability to spy on Americans and to conduct covert.
आज उठाए गए कदम अमेरिका को और सुरक्षित बनाएंगे। इससे रूस की खुफिया जानकारियां जुटाने और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले गुप्त अभियान संचालित करने की क्षमता कम होगी। इस कदम से अमेरिका और दुनिया भर में हमारे सहयोगी देशों ने रूस को स्पष्ट कर दिया है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम बेहतर संबंध बनाने के लिए रूस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा रूसी सरकार के रवैये में बदलाव से ही संभव हो सकेगा। वहीं रूस ने बड़ी तादाद में राजनयिकों के निष्कासन को उत्तेजक कार्रवाई बताते हुए कहा है कि वह इस पर प्रतिक्रिया देगा। रूस के सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अंतिम फैसला राष्ट्रपति पुतिन को ही लेना है। उन्होंने कहा, मुख्य आकलन हमारे कूटनीतिक विभाग में किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जवाबी कार्रवाई के प्रस्ताव। अंतिम फैसला राष्ट्राध्यक्ष ही लेंगे। वहीं देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए गठित रूस की संसदीय समिति के प्रमुख एंड्रेई क्लाइमोफ का मानना है कि ताजा घटनाक्रम से टकराव और बढ़ेगा। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
Countries whom you're speaking about now, they are mostly from NATO, and I'm not surprised that some countries like to demonstrate.
जिन देशों की आप बात कर रहे हैं उनमें से अधिकतर नेटो के सदस्य देश हैं, और मुझे इस बात को लेकर कोई हैरत नहीं है कि कुछ देश गठबंधन दर्शाना चाहते हैं। ये आप जानते हैं कि एक तरह की एकजुटता है, लेकिन ये सिर्फ प्रदर्शन भर है। लेकिन मेरा तर्क ये भी है कि ये समस्या के समाधान का तरीका नहीं है, बल्कि ये टकराव को और बढ़ाने का तरीका है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने भी 13 रूसी राजनयिकों को निकालने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम ब्रिटेन के समर्थन में है। वहीं ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कई देशों द्वारा रूसी राजनयिकों के निकाले जाने के फैसले का स्वागत किया है। यूरोपीय यूनियन के नेता पिछले हफ्ते इस बात को लेकर सहमत हुए थे कि दक्षिणी इंग्लैंड में पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्राइपल और उनकी बेटी यूलिया पर नर्व एजेंट से हमले के पीछे रूस का हाथ था। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।
दिलनवाज पाशा से ब्यौरा सुन रहे थे आप।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन लगभग तय होने के बाद जहां इसे अंतिम रूप देने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं गठबंधन को लेकर कई तरह की आशंकाएं और सवाल भी उठ रहे हैं। पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के बाद एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि सपा बसपा गठबंधन से ज़्यादा फायदा सपा को होगा या फिर बसपा को। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है समीर आत्मज मिश्र ने इस रिपोर्ट में।
ये जीत माननीय नेताजी की, माननीय अखिलेश यादव और बहन जी की जीत है। जिस प्रकार से 4 वर्षों में छात्रों, नौजवानों, किसानों को एकदम परेशान कर दिया गया था इस सरकार में, उसी को परास्त किया गया है। बुआ भतीजी ने जो साथ दिया है,
ये एक संदेश गया है 2019।
फूलपुर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सपा और बसपा के कार्यकर्ता एक साथ जश्न मना रहे थे और भविष्य को लेकर बेहद आशान्वित थे। लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में जब बीएसपी उम्मीदवार हार गया तो ये सवाल उठने लगा कि क्या सिर्फ बसपा ही अपने वोट सपा को दिला पाती है। हालांकि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में काफी अंतर होता है, लेकिन ये सवाल अब 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी पूछा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता आयरन कहती हैं कि गठबंधन से फायदा किसे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि नुकसान किसे होगा।
मेरे हिसाब से इसमें बीजेपी को नुकसान रहेगा। फायदा अब डिपेंड करेगा कि दोनों की सीट शेयरिंग क्या होती है, कितने सीट पे कौन लड़ते हैं, कांग्रेस भी उसमें आती है कि नहीं आती है महागठबंधन में, तो मच वुड डिपेंड ऑन द शेयरिंग ऑफ सीट। बट डेफिनेटली बीजेपी को इससे नुकसान होगा। देखिए बहुत चीजें डिपेंड करती है, किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, क्या लड़ाई हो रही है। जब एक बारी 15% आपके साथ है तो मुस्लिम आपका आ जाता है, तो एक विनिंग कैंडिडेट दिखने लगता है, तब बाकी जातियां भी चली जाती हैं।
दरअसल बीएसपी के समर्पित मतदाताओं की वजह से ऐसा कहा जाता है कि वो अपने वोट किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में ट्रांसफर करा सकती है। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पर यही बात लागू नहीं होती। सुनीता आयरन कहती हैं कि सपा का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से ही दूर चला गया था, जबकि बसपा के साथ ऐसा नहीं हुआ। बसपा को सीटें भले ही कम मिली हों, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई। जानकारों के मुताबिक गठबंधन से निश्चित तौर पर दोनों दलों को फायदा होगा और बीजेपी के सामने अपने गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में भी मुश्किल हो सकती है। गोरखपुर में एक सपा कार्यकर्ता का कहना था,
अब तक जो चुनाव होते थे वो होता था गोरख स्पीड बनाम पार्टी, तो गोरख स्पीड से लोगों की आस्था ज्यादा जुड़ जाती थी और वो भी एक हार की वजह हम लोग की बनती थी।
यानी अगर योगी जी फिर उतर आए मैदान में लोकसभा के चुनाव में तो गठबंधन के बावजूद ये भारी पड़ जाएगा।
अब तो खंभा हिल गया, और जब खंभा हिल जाता है, किसी मकान की नींव जब एक बार हिल गई तो फिर स्टेबिलिटी आना बड़ा मुश्किल काम है। अब तो योगी जी भी लड़ेंगे तो उनको भी हार के लिए तैयार रहना चाहिए।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यदि ज्यादा फायदे की बात करें तो निश्चित तौर पर वो बीएसपी को होगा।
अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सीटों को लेके गफलत नहीं रहती है तो फायदा मायावती को जाके होगा। वजह मायावती शून्य पर है, लोकसभा में शून्य पर है और विधानसभा में अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस में 19 पर है। दूसरा, जो मुस्लिम वोट नहीं कर रहा था इनको, जो ओबीसी वोट नहीं कर रहा था वो वोट करेगा, और जब भी अखिलेश यादव अलग होंगे तो हो सकता है 1%, 2%, 5%, 3%, 10% वोट उसमें से रुक गए, क्योंकि उसका लीडर इनकी पॉलिटिकल पार्टी में क्रिएट हो चुका रहेगा।
जानकारों के मुताबिक इन सवालों के जवाब के लिए अभी ये देखना होगा कि गठबंधन की शक्ल क्या होती है, कांग्रेस गठबंधन में शामिल होती है या नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि 2019 में स्थिति 2014 के लोकसभा चुनाव जैसी नहीं होगी, न तो बीजेपी के लिए, न कांग्रेस के लिए और न ही सपा बसपा के लिए। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
कल मध्य प्रदेश में संदीप शर्मा नाम के एक पत्रकार को एक ट्रक ने कुचल दिया। परसों बिहार के भोजपुर में दैनिक भास्कर अखबार के पत्रकार नवीन निश्चल और उनके एक साथी की गाड़ी से टक्कर में मौत हो गई थी। इन घटनाओं को उनके परिजनों ने हत्या का मामला बताया है। इससे पहले दिल्ली में जेएनयू छात्रों और शिक्षकों की रैली में पत्रकारों से मारपीट और बदसलूकी के आरोप भी सामने आ चुके हैं। पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की घटनाओं के विरोध में कल दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से पत्रकारों ने मार्च निकाला। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयशंकर गुप्ता से संपर्क किया और उनसे पूछा कि इस मार्च का मकसद क्या था।
पत्रकारों के लिए काम करना आज के दौर में तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। आपको बता दूं मैं, अभी एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इन्होंने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है उसमें भारत की स्थिति सबसे नीचे, मतलब 191 पे पहुंच गई है। जो 2014 में 171 थी, अभी 191 पे आ गई है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी हमारे यहाँ हालत खराब है, और दिल्ली जहाँ पे मतलब केंद्र सरकार बैठी है, गृह मंत्री बैठे हैं, सारी संस्थाएं हैं, और दिल्ली पुलिस ने परसों जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं पर हमले किए, उसकी कवरेज करने वाले पत्रकारों फोटोग्राफरों पे हमले किए, इवन जो महिला पत्रकार थी उसमें से किसी एक पत्रकार के ब्रेस्ट को दबा दिया, बदसलूकी किया, और उसके बाद सिर्फ एक कांस्टेबल को इन लोगों ने, जब इन्होंने विरोध किया पत्रकारों ने, तो एक कांस्टेबल को सस्पेंड करके अपनी इतिश्री कर ली। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक है। और गृह मंत्री से भी लोग मिले, उस पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारी जब ऑन ड्यूटी होता है, पुलिस के लोग ऑन ड्यूटी होते हैं, उन पे कोई हमला होता है तो हमलावर पे गैर जमानती धारा के तहत गिरफ्तारी होती है उनकी, तो उसी तरह से जो पत्रकार हैं, जो छायाकार हैं, कैमरामैन हैं, वो जब ऑन ड्यूटी करते हैं उन पे जब हमला होता है तो हमलावर के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू होना चाहिए, FIR होना चाहिए।
प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसमें क्या कर रहा है?
प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया है। आज हम लोगों ने जो प्रदर्शन था उसमें सारे संगठन शामिल थे, IWPC महिला पत्रकारों का जो प्रेस क्लब है उनके, वो लोग थे, प्रेस क्लब के लोग थे, NUJ IJOY जितने थे वो सारे संस्थाओं के लोग गए। और हम लोगों ने जो पार्लियामेंट के गेट तक जाकर के अपना विरोध किया, उसके आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इस लड़ाई को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और संसद के अंदर हो सकता है कि संसद भवन में जाते समय काले बिल्ले लगाकर जाएं, काले फीते लगा करके जाएं, विरोध जरूर करें। पत्रकारों के विरोध की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है, उससे आगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे, लोकतंत्र में जितना भी संभव होगा उतना हम लोग करेंगे। आपको बता दूं मैं, जिस तरह से अभी सरकार ने प्रेस फ्रीडम पे जो अटैक शुरू किया है, हम लोग का जो प्रेस एसोसिएशन का ऑफिस है ये नेशनल मीडिया सेंटर में, उसको खाली करने के लिए एक तरफा ऑर्डर कर दिया। तो यूनियनों को, ऑर्गेनाइजेशन को, एसोसिएशन को धता बता करके, दरकिनार करके ये सरकार एक तरफा फैसले कर रही है, एक तरफा काम कर रही है।
सरकार से और आपकी क्या मांग होगी?
पहली बात तो ये जांच होनी चाहिए कि ये जो पुलिस के हमले हुए, चाहे लाजपत नगर में हुए, चाहे ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं पे जो हमले हुए और पत्रकार जो पीटे गए, उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या किसी मजिस्ट्रेट ने इसका आदेश दिया था कि नहीं। अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश नहीं दिया था तो ये आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए। और इसमें जो भी शामिल हैं, मौके पे जो SCP रहा हो, जो SHO रहा हो और जो और भी अफसर रहे होंगे पुलिस के, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए।
प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जयशंकर गुप्ता।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
मध्य प्रदेश के सागर स्थित हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में छात्राओं के कपड़े उतारकर जांच करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हॉस्टल परिसर में एक इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी नैपकिन मिला था, वो नैपकिन वहां किसने फेंका? आरोप है कि इसकी जांच के लिए छात्राओं को निर्वस्त कराया गया, ये देखने के लिए कि किस छात्रा को माहवारी हो रही है। मामला उजागर होने के बाद कुलपति ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि 3 दिन के भीतर रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
सागर की हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल के परिसर में 24 मार्च को एक इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड मिला था। इसके बाद इसको लेकर छात्राओं से पूछताछ की गई थी। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें निर्वस्त्र कर जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस लड़की की माहवारी हुई है। 2 दिन तक इस मामले को दबाने का प्रयास चलता रहा, लेकिन उसके बाद छात्राओं ने इसका विरोध किया। इस मामले में लड़कियों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन वो चाहती हैं कि उनका नाम सामने ना आए। इन लड़कियों का कहना है कि उनके साथ जाँच के नाम पर कुछ ज्यादा ही किया गया। हॉस्टल की एक लड़की ने बताया,
अगर हम लोग आपको वाइड में नहीं बोल सकते कि क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ, लेकिन ये बहुत ज्यादा मिसबिहेव हुआ है और इस हरकत की वजह से हम लोग बहुत बहुत ज्यादा शर्मसार रहे हैं। कई लड़कियां तो हमारे हॉस्टल की बेहोश पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटल में आप चेक कर सकते हैं। कई लड़कियां इस सदमे की वजह से ज्यादा डीपली बीमार हो गई हैं। तो मेरा आपसे कहना यही है कि हम लोग के साथ इतना मिसबिहेव किया गया है छोटी सी बात को लेके कि हम आपको पूरा डीपली नहीं बता सकते। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन करे उनको दरखास्त किया जाए।
छात्राओं ने कुलपति से मिलकर वार्डन चंदा वेन की शिकायत की। छात्राओं के मुताबिक हॉस्टल की गैलरी में कुछ खून के निशान मिले थे जो बाथरूम तक दिख रहे थे। वहीं बाथरूम के दरवाजे पर इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड पड़ा हुआ था। इसके बाद छात्राओं से पूछा गया कि यह किसका काम है, लेकिन जब छात्राओं ने नहीं बताया तो एक एक छात्रा को बुलाकर उसका परीक्षण किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस छात्रा की महावारी आई हुई है। आरोप है कि इसी जाँच के दौरान छात्राओं को निर्वस्त्र किया गया। कुलपति RP तिवारी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जांच के बाद हम 2 निष्कर्ष पर निकलेंगे, एक तो ये कि कौन दोषी है, जो दोषी पाया जाएगा उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी, और दूसरा ये कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। उसमें एक कदम ये है कि जागरूकता अभियान में और गतिशीलता आए और आज और ज्यादा संख्या में इस तरह के कार्यक्रम हो।
वहीं प्रदेश के एक महिला मंत्री माया सिंह ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपनी निजता का अधिकार है। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
करीब 2 साल पहले गुजरात के ऊना में गोरक्षकों की ओर से दलितों को पीटे जाने का एक मामला सामने आया था, जिसने प्रदेश में एक दलित आंदोलन की नींव रखी थी। ऊना पीड़ितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की बात पहले भी कही थी, लेकिन अब उन्होंने इसकी तारीख भी तय कर दी है। हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद ने अहमदाबाद में मौजूद बीबीसी गुजराती संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा से संपर्क किया और पूछा कि ऊना मामले के पीड़ित बौद्ध धर्म आखिर क्यों अपनाना चाहते हैं।
जी देखिए, इसमें ऊना में जुलाई 7, 2016 को 4 लोगों को रास्ते पर मारा गया था और उनकी परेड की गई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में एक दलित आंदोलन खड़ा हुआ था। वो जुलाई की जो घटना थी, उसके बाद अगस्त 15 को एक बहुत बड़ी मुहिम गुजरात में खड़ी हुई और ऊना में बहुत बड़ी मात्रा में दलित समाज के लोग वहां पर गए। उसके बाद में ये हुआ कि बड़े बड़े नेता आनंदीबेन पटेल, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आनंदीबेन पटेल, राहुल गांधी, मायावती, अरविंद केजरीवाल से लेकर हर छोटा बड़ा नेता, ये जो फैमिली थी विक्टिम फैमिली, उनको मिलने के लिए वहां पर पहुंचा था। और आनंदीबेन पटेल ने एक प्रॉमिस किया था कि भाई आप लोगों को जमीन दी जाएगी, आप लोगों को नौकरियां दी जाएगी और आप लोगों को रहने के लिए घर दिए जाएंगे। ऐसा एक प्रॉमिस कमिटमेंट गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से आनंदीबेन पटेल ने 2016 में जब इनकी मुलाकात ली थी विक्टिम से तब दिया था। लेकिन अब 2018 में जब असेंबली में जिग्नेश मेवानी जो कि एक दलित लीडर है, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था कि भाई जो ऊना के विक्टिम्स हैं उनको जो प्रॉमिस आनंदीबेन ने किया था वो कमिटमेंट आप कब पूरा करेंगे, तो ऑन रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने कोई कमिटमेंट किया नहीं था, कोई भी चीज जो आनंदीबेन ने कही थी वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऑन पेपर पर नहीं है। इसके चलते जो विक्टिम्स थे, जो पहले से ही ये सोच रहे थे कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर और बौद्ध बन जाए, बुद्धिस्ट बन जाए, तो उन्होंने बाद में एक अनाउंसमेंट किया कि वो 29 अप्रैल को बौद्ध धर्म का अंगीकार करेंगे और हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। बीबीसी से बात करते वक्त बालू भाई सरवैया, जो कि इस परिवार के मुखिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि 29 अप्रैल को वो उनके पूरे परिवार के समेत बुद्धिस्ट बन जाएंगे और उन्होंने ये भी अपील की है कि गुजरात में जितने भी विक्टिम्स हैं इनजस्टिस के, एट्रोसिटी के, दलित समाज के लोग, उन सभी को अपील की है बालू भाई ने कि वो लोग भी उनके साथ उस दिन जुड़े और हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाएं।
गुजरात चुनाव के दौरान इनके द्वारा बीजेपी का प्रचार करने की भी बात कही जा रही थी कि इसमें कितना दम था,
उसकी कुछ पुष्टि नहीं हुई थी। एक अफवाह थी कि ये लोग बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि हुई नहीं थी। हम लोगों ने बीबीसी में उस वक्त बात की थी इनसे और उन्होंने उस वक्त ना कहा था कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है।
ये थे बीबीसी गुजराती संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा। अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का, और समीक्षा आप सुनेंगे दिलनवाज पाशा से, जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बताएं दिलनवाज
जी। कुलदीप, मैं सभी अखबार लगभग देख चुका हूं। कल दिल्ली में एक मीडिया संस्थान ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था और मीडिया पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। उस स्टिंग ऑपरेशन जब वो प्रेस वार्ता हो रही थी तो खचाखच भरा हुआ था हॉल, लेकिन आज किसी भी अखबार में कहीं उससे जुड़ी कोई खबर,
कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन
जी उसी की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं वो खबर किसी अखबार में मुझे नहीं दिखी है। एक खबर जो सभी अखबारों में पहले पन्ने पर है, निकाह हलाला और बहुविवाह की जो परंपरा मुस्लिम समुदाय में है उसकी समीक्षा संविधान पीठ करेगी। सभी अखबारों ने इस खबर को अलग अलग तरीके से लिया है। हिंदुस्तान अखबार में बसपा नेता मायावती का बयान है, उन्होंने कहा है भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है, और मायावती का यह बयान अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह से प्रकाशित हुआ है। एक खबर दैनिक जागरण की ध्यान खींच रही है, लूट का सोना दिल्ली पुलिस के सिपाही व दरोगा के घर निकला, 10 किलो सोना गाजियाबाद से आ रहे व्यापारियों से लूटा गया था। 19 मार्च को यह घटना हुई थी और लूट में शामिल पुलिस वाले ही निकले, दिल्ली पुलिस के से जुड़े लोग हैं जो इस लूट में शामिल बताए जा रहे हैं।
एक खबर मैं तब तक दैनिक भास्कर से पढ़ दूँ, सबसे नीचे ये खबर है और ये एक किस्म से सकारात्मक खबर है सुबह पढ़ने के लिए। इसमें लिखा है कि 177 साल में पहली बार महिलाओं के बराबर उम्र पाने के करीब पहुंचे पुरुष, 5 गुना स्मोकिंग कम की, औसत उम्र 2 साल बढ़ी। ये एक सर्वे में सामने आया, पूरी दुनिया के पुरुषों के बारे में एक सर्वे हुआ है कि 177 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि महिलाओं के बराबर औसत उम्र के करीब पुरुष पहुंचे हैं।
जी कुलदीप, आपने सकारात्मक खबर पढ़ी और मेरे सामने जो खबर है वो हमारे समाज को आईना दिखाती है। इंदौर में पिता की दरिंदगी से 6 माह की गर्भवती 8वीं की छात्रा परीक्षा की चिंता में है। उसने कहा है कि पहले मुझे एग्जाम देने दो और बाद में मुझे डॉक्टरों के पास ले जाना। इस बच्ची के साथ उसी के पिता ने बलात्कार किया था और ये खबर आज अखबार में प्रकाशित है। इसके अलावा एक और खबर है, दिल्ली में एक व्यापारी ने पत्नी और बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली है और कल ट्विटर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच काफी वाद विवाद होता रहा, एक दूसरे
की एप्लीकेशन डिलीट करने को लेकर। दैनिक भास्कर का शीर्षक बता दूं, लिखा है राहुल ने 11 बजे कहा डिलीट नमो ऐप, 2 बजे पता चला कि कांग्रेस ने अपना ही ऐप हटा लिया।
और अमर उजाला में है बिग बॉस बनाम छोटा भीम। मैं ये खबर पढ़ के समझ नहीं पा रहा हूँ कि राजनीति का हमारा स्तर कहाँ पहुंच गया है। एक पार्टी के नेता को बिग बॉस कह रहे हैं तो दूसरा छोटा भीम कह रहे हैं, तो आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या।
अलग अलग अखबारों के अलग अलग रंग। एक दैनिक भास्कर में ये खबर है कि डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में भारत की 109वीं रैंक है। बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटा दिया है। स्मिथ की जगह अब अजिंक्य रहाणे टीम की कमान संभालेंगे। हालांकि स्मिथ बतौर बल्लेबाज टीम के साथ जुड़े रहेंगे। आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज कैमरन बैंक्रॉफ्ट पर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगा था। वो बॉल टैंपरिंग करते हुए वीडियो में भी दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद बैंक्रॉफ्ट के साथ कप्तान स्मिथ ने भी इस पर माफी मांगी है। बॉल टैंपरिंग जैसे गंभीर आरोप के बाद आईसीसी ने स्मिथ पर एक मैच का बैन और मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया है, जबकि कैमरन बैंक्रॉफ्ट पर मैच फीस के 75% जुर्माने के बाद 3 डिमेरिट पॉइंट्स मिले हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं मायामी की तरफ, जहां पर टेनिस में खेला जा रहा है मायामी ओपन। मायामी ओपन में आज मेन सिंगल्स में सबसे रोचक मुकाबला होगा अर्जेंटीना के खिलाड़ी उआन मार्टिन डेल पोर्टो और सर्बिया के खिलाड़ी फिलिप क्राजिनोविच के बीच। उआन मार्टिन डेल पोर्टो वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडियन वेल्स मास्टर्स में रॉजर फेडरर को फाइनल मुकाबले में हराते हुए इंडियन वेल्स मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया था। यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि मायामी ओपन से रॉजर फेडरर बाहर हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड के स्टार खिलाड़ी रॉजर फेडरर को थानासी कोकिनाकिस ने 3-6, 6-3, 7-6, 7-4 से मात देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो वहीं विमेन सिंगल्स की बात करें तो आज येलेना ओस्टापेंको और पेट्रा क्विटोवा के बीच मुकाबला होना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रॉजर फेडरर ने मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिली हार के साथ ही इस साल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का हिस्सा ना बनने की घोषणा की है। और अब खबर फॉर्मूला 1 की। सेबास्टियन वेटल ने वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को रोमांचक मुकाबले में पछाड़कर सत्र की पहली ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला 1 ग्रां प्री जीत ली है। 4 बार के चैंपियन रहे सेबास्टियन वेटल की मेलबर्न में ये लगातार दूसरी और कुल तीसरी जीत है। आपको बता दें ये मुकाबला 25 मार्च को खेला गया था।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिलनवाज पाशा से।
ब्रिटेन में हुए नर्व एजेंट हमले के बाद रूसी राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, यूक्रेन और दर्जनों यूरोपीय देशों ने रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने की घोषणा की थी। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि बुल्गारिया में हुई बैठक में उठाई गई चिंताओं पर उन्हें तुर्की की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। 1982 में हुए फॉकलैंड युद्ध में मारे गए अर्जेंटीना के 90 सैनिकों के परिवारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इन सैनिकों के शवों की फोरेंसिक जांच के बाद पहचान की गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 19वीं सदी में ब्रितानिया औपनिवेशिक अधिकारियों के हाथों फांसी पर लटकाए गए 5 मूल निवासी नेताओं की मौत के लिए औपचारिक माफी मांगी है। कनाडा की संसद को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा कि चिल्कोतिन नेताओं की कोई गलती नहीं थी। साल 1864 में 5 मूल निवासी नेताओं को बुलाया गया था। उन्हें लगा था कि वो शांति वार्ता के लिए आए हैं, लेकिन बाद में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।